यह निश्चय हुआ था कि राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी का विवाह अत्यंत शक्तिशाली पुरुष मलयध्वज के साथ किया जाए जो पांडुदेश का रहने वाला था। उसने अन्य राजकुमारों को पराजित करके राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह कर लिया। तात्पर्य, क्षत्रिय में प्रचलन है कि किसी राजकुमारी का विवाह कुछ शर्तों के अंतर्गत किया जाए। उदाहरणार्थ द्रौपदी का विवाह उसके साथ होना था जो मछली की परछाई देखकर उसे वाण द्वारा भेद देगा। इसी तरह श्री कृष्ण ने 7 बलवान सांडों को हराकर अपनी एक रानी को प्राप्त किया था। यह वैदिक प्रथा थी कि राजा अपनी कन्या का विवाह कुछ शर्त के साथ करे। राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी एक परम भक्त था, शक्तिशाली राजा को प्रदान की गई थी। क्योंकि मलयध्वज एक शक्तिशाली राजा था, महान भक्त था, इसीलिए वो सारी शर्तों को पूरा करता था। मलयध्वज नाम ही ऐसे भक्त का सूचक है जो मलय पर्वत की भांति अटल हो और अपने प्रचार से अन्य भक्तों को भी अटल बनाए। ऐसा महाभागवत अपनी बात को सभी को मनवा सकता है। प्रबल भक्त अन्य समस्त आध्यात्मिक विचारधाराओं यथा ज्ञान, कर्म तथा योग के विरुद्ध प्रचार करता है। वह अपनी भक्ति पता का फहरा कर अन्य आध्यात्मिक विचारधाराओं को जीतने पर अटल रहता है। जब भी एक भक्त तथा अभक्त में शास्त्रार्थ होता है तो शुद्ध प्रबल भक्त सदैव विजयी होता है। पांड्य शब्द पंडा से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान। जब तक कोई शीर्षस्थ विद्वान ना हो वो भक्तिपूर्ण विचारों पर विजय नहीं पा सकता। शब्द का अर्थ है दिव्य तथा पूर्व शब्द का अर्थ है नगरी। अच्छा, पर शब्द का अर्थ है दिव्य तथा पूर्व शब्द का अर्थ है नगरी। पर पूर्व वैकुंठ है और जय शब्द जीतने वाले का सूचक है। इसका अर्थ यह हुआ कि शुद्ध भक्त यदि भक्ति में प्रबल है और उसने सभी अभक्तिपूर्ण विचारों पर विजय पा ली है तो वह वैकुंठ को भी जीत सकता है। दूसरे शब्द में केवल भक्ति के द्वारा वैकुंठ को जीता जा सकता है। भगवान को अजीत कहा गया है, किंतु एक प्रबल भक्त अपनी दृढ़ भक्ति तथा सच्ची अनुरक्ति से भगवान को भी जीत लेता है। भगवान कृष्ण सबों के लिए साक्षात भय है, किंतु सच्चा से वे यशोदा माता की छड़ी से भी भयभीत होते हैं। कृष्ण को उनके भक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जीत सकता। ऐसे ही एक भक्त ने राजा विदर्भ की कन्या के साथ विवाह किया। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्रीगुरुर् श्रीजुतपदकमलं श्रीगुरुर् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथ नितम तम सजीवम साध्वेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। तो हम लोग पुरंजन के प्रसंग के बारे में बहुत दिनों से श्रवण करते आ रहे हैं। पुरंजन का कथा स्वयं परम भक्त न्यष्टिक ब्रह्मचारी स्वयं नारद मुनि ने कर्मकांडी में लिप्त प्राचीन भरिषत को सुना रहे हैं, क्योंकि प्राचीन भरिषत कर्मकांड में हमेशा लिप्त रहता था। तो प्राचीन भरिषत को प्राचीन भरिषत के ऊपर कृपा करने के लिए स्वयं नारद जी ने उनके सामने प्रकट हुए और उनको इस पुरंजन उपाख्यान को सुनाने लगे। वास्तविक पुरंजन जो है, ये जो पुरंजन का कहानी है वो हम लोग का ही कहानी है, ये बद्ध जीवात्मा का ही कहानी है, जो इस संसार में ये भौतिक जगत में जन्म मृत्यु चक्र में भ्रमण करते आ रहा है। संसार चक्रे भ्रमतो स्वकर्म भी, संसार चक्रे भ्रमतो स्वकर्म भी। स्वकर्म भी अर्थ है अपनी कर्म। तो अपनी कर्म के अनुसार हम इस संसार में भ्रमण करते हैं। जीवात्मा जिस प्रकार कर्म करता है उसे उसी प्रकार ही फल मिलता है, फल प्राप्त होता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं किसी का कर्म से प्रभावित नहीं हूं। और कोई मेरा प्रिय भी नहीं है और कोई मेरा शत्रु भी नहीं है, द्वेषी भी नहीं है। जो भी कोई इस संसार में दुख प्राप्त करता है या दुख अनुभव करता है तो वो अपने ही कर्म के अनुसार ये दुख भोगता है। तो ये जो पुरंजन है वो भी अपनी कर्म के अनुसार ही संसार चक्र में भ्रमण करते आ रहा है बहुत समय से, जन्म जन्मांतर से लेकर अभी तक इस भौतिक संसार में इंद्र तृप्ति के पीछे भागते हुए वो अपना कर्म को भोगता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं पुरुषो प्रकृतिस्थ ही भुंक्ते प्रकृतिजेर गुणान कारण गुण संघस्य असत सत असत जन्म जोनि जन्मसु। पुरुषो प्रकृतिस्थ ही भुंक्ते प्रकृतिजेर गुणान, एग्जैक्टली वही बात कह रहे हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं पुरुषो प्रकृतिस्थ ही भुंक्ते, तो पुरुष इस प्रकृति में स्थित होकर, प्रकृति मतलब हमारा शरीर ही है, इस देह में स्थित होकर वो अपना कर्म को भोगता है अपना गुण के हिसाब से। जैसे मनुष्य सत्व रजो तमो तीन गुण से ही वो कार्य करता है, साधारणतः प्रभुपाद अपना लेक्चर में कहते हैं और अपना पावरपॉइंट में लिखे हैं कि जनरली जो तीन गुण होता है, ये जो सत्वगुण है वो सुबह के समय को हम सत्वगुण ही समझते हैं। जैसे हम 3:30-4 बजे उठते हैं, मंगला आरती दर्शन करते हैं, फिर जो प्रभुपाद ने जो शेड्यूल बनाए हैं उस शेड्यूल को हम फॉलो करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, फिर भागवतम क्लास में बैठते हैं, तो इस प्रकार फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये लेकर 9-10 बजे तक ये सात्विक परिवेश रहता है। और फिर 10 बजे से लेकर शाम तक 4-5-6 बजे तक ये रजोगुणी से जीवात्मा प्रभावित होता है। कैसे ना, हम लोग साधारणतः इवन भक्त भी, जैसे वो कहीं सेवा में जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट सेवा रहता है, बहुत अलग अलग प्रकार का लोगों को मिलना पड़ता है, उनसे वाणी का आदान प्रदान करना पड़ता है, तो इसमें कभी कभी रजगुण में रहकर भी कार्य करते हैं। जनरली भौतिक जगत में हम देख सकते हैं, तो लोग जो फैक्ट्री में, जो अपना ऑफिस में जो काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो कितना भागते हैं, सिर्फ भागते ही हैं, अभी ये नहीं, अभी वो नहीं, ये करना है, वो करना है, हमेशा माइंड डिस्टर्ब रहता है, बिजी रहते हैं, तो ये रजोगुण का लक्षण है, तो वो रजोगुण में रहते हैं। फिर शाम से लेकर फिर 3 बजे तक रात को लेकर ये तमोगुण की प्रभाव है, क्योंकि जो नींद है हमारा वो तमोगुणी है, हम लोग रात को सोते हैं तो तमोगुण की रात चलता है नींद रात को, तो इस प्रकार पूरा दिन में ये तीन गुण कार्य करता रहता है, और एक दूसरे से कभी कभी लड़ाई भी होता है, कभी सत्वगुण रजगुण को परास्त कर लेता है, कभी रजगुण तमोगुण को परास्त कर लेता है, कभी सत्वगुण रजगुण सत्वगुण को परास्त कर लेता है, कभी तमोगुण सत्वगुण रजगुण दोनों को परास्त कर लेता है, तो वैसा इनके अंदर एक संघर्ष चलता रहता है। तो इस प्रकार हम इस संसार में भ्रमित होकर भ्रमण करते हैं, तो पुरंजन भी वैसे ही है। ये पुरंजन अभी इस श्लोक में विवाह किया है, श्लोक में बता रहे हैं, यह निश्चय हुआ था कि राजा विदर्भ की कन्या वैदर्भी का विवाह अत्यंत शक्तिशाली पुरुष मौलध्वज के साथ किया जाए। जो विदर्भी है यही पुरंजन ही है, जो कि वैदर्भ की कन्या के रूप में प्रकट हुआ है। ये कैसे हुआ, हम पहला श्लोक में हम पढ़े हैं, कल प्रभु जी ने क्लास दिए, प्रभु जी ने विस्तार से बताए हैं कि ये अपना स्त्री से आसक्त था, स्त्री से आसक्त होने के कारण वो अपने स्त्री के प्रति उनका मुह बहुत प्रबल होने के कारण वो सिर्फ उसी स्त्री के बारे में चिंतन करते थे, क्योंकि वो अपना स्त्री से बहुत प्रेम करता थे। कोई भी व्यक्ति अपना स्त्री को प्रेम करता है, स्वाभाविक है। भौतिक जगत में पति पत्नी एक दूसरे को प्रेम करते हैं, तो साधारण ऐसा भी होना भी चाहिए, तो नहीं तो पारिवारिक जीवन में इतना आनंद नहीं मिलता है। तो ये पुरंजन जब स्त्री से आसक्त हुआ होने कारण, तो उनके बारे में हमेशा चिंतन करता रहा। तो चिंतन करते 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 तो एक दिन उसका शरीर छूट गया, शरीर त्याग दिया। इसी विषय के ऊपर भगवान अर्जुन को समझाते हैं भगवत गीता में, अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रजाति समद्भावम याति नत्रत्र संशया। यंग यंग वपि स्मरण भावम त्यज्यन्ति अन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। ये दो श्लोक में भगवान बताते हैं इसका गूढ़ चीज को बताते हैं। अंतकाले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कलेवरम मतलब हम लोग है, जीवात्मा है, हम लोग जो देह धारण किए हैं, चाहे पुरुष शरीर हो चाहे स्त्री शरीर हो, हम सब देहधारी है, क्योंकि हम देह को धारण किए हैं, देही है। तो जब हम अंतकाले चमामे बस स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जब कलेवर या जीवात्मा अंतकाल में मृत्यु के समय जैसे से चिंतन करता है, वो ऐसे स्थिति को प्राप्त करता है। मान लो कोई चिंतन करता है कि मैं बहुत बड़ा राजा बनूंगा, मुझे राजा बनने का बहुत प्रबल इच्छा है, तो हमेशा चिंता करता मैं कब राजा बनूं, कब राजा बनूं। पर ऐसे चिंतन करते 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 जब उसका शरीर छूट जाता है, तो फिर क्या होता है, दूसरे शरीर प्राप्त होता है, फिर वो ऐसा स्वभाव को प्राप्त होता है। जैसे एक भागवत में एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे एक कीड़ा है, भृंगी है, भृंगी नाम का कीड़ा है, वो एक कीड़े को लेकर अपना घर के अंदर डाल देता है, डाल के उसको बंद कर देता है, और वो हमेशा उसी घर के अंदर रहकर वो चिंतन करता है, वो भृंगी का चिंतन करता है। तो फिर एक दिन वो सो शरीर वो वही शरीर प्राप्त हो जाता है, कि इसका चेतना का ऊपर निर्भर करता है। वैसे यहां कहते हैं अंतकाल चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रजाति समत भावम जाति नत्रत्र संशय। इसमें कोई संदेह नहीं, भगवान कहते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, जो जैसे जैसा भाव को मृत्यु के समय चिंतन करता है, वो ऐसा भाव को प्राप्त होता है। जैसे यहां पुरंजन अपना स्त्री के चिंतन किया, स्त्री के चिंतन करने के कारण उसे स्त्री शरीर प्राप्त हो गया। स्त्री शरीर प्राप्त होने के बाद वह मलयध्वज नाम का एक बहुत बड़ा भक्त है, भगवान का भक्त है, वो भक्त से उनका विवाह तैयार हो गया। तो वो एक भक्त से विवाह किया, एक भक्त से अगर 5 मिनट या अगर 1 मिनट भी हम संग करते हैं, एसोसिएशन लेते हैं, तो हमें बहुत बड़ा फल प्राप्त हो जाती है। जैसे नारद मुनि कहते हैं, जो व्यक्ति एक पल भी साधुओं का संग करता है वो बहुत बड़ा विपद से उबर जाता है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लभ्य मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। लभ्य एक पल, और ये पुरंजन जो स्त्री शरीर प्राप्त किया वो कितना भाग्यवान है, कितना लक्की है, वो एक महान भक्त, भगवान का महान भक्त से उनका विवाह हुआ, उनका एसोसिएशन मिला, जिसके कारण उसका भी उनके भी उद्धार हो गई। तो ये भी पुरंजन का भी पुण्य का फल है, क्योंकि पुरंजन पुण्य कर्म में लिप्त था, कर्मकांड जो करते हैं उनको भी पुण्य मिलता है। ये पुण्य कर्म के कारण और भगवान कृपा से उसे यद्यपि स्त्री शरीर प्राप्त हुआ फिर भी उक्तु उसको भक्त संग मिला। तादेर चरण सभी भक्त सनेवास, जनमे जनमे हय यही अभिलाष, यही अभिलाष होना चाहिए भक्तों का, हमेशा हमको भक्तों का एसोसिएशन मिले, भक्तों का संग मिले। ये जो हम भागवतम सुन रहे हैं, भागवतम गार में हम बैठे हैं, ये डिवोटी एसोसिएशन है, भक्त संघ है। इसीलिए कहा गया नित्यम भागवत सेवया, ऐसा एसोसिएशन सिर्फ भागवतम क्लास में मिलता है, बाकी समय तो को अपना अपना सेवा में अपना अपना कार्य में सब चले जाते हैं, लेकिन जो ये भागवतम क्लास है ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद ने इसलिए हमेशा कहते हैं नित्यम भागवत सेवया। तो वैदर्भी जो वैदर्भ राजा का पुत्री है उनका विवाह मलयध्वज से हो गया, और दोनों भी भक्त हैं। वैदर्भी भी बहुत बड़ा भक्त भक्त बनी और मलयध्वज तो भक्त था ही, और यहां कुछ शर्त था, जब कोई किसी का पुत्री का विवाह करना चाहते हैं, साधारणतः एक क्षत्रियों के ऊपर ये लागू होता है शास्त्र के अनुसार, तो क्षत्रिय होते हैं वो हमेशा पराक्रम देखना चाहते हैं। जो क्षत्रिय है वो चाहेगा मैं एक क्षत्रिय से लड़ूं। क्षत्रिय का एक स्वभाव होता है हमेशा वो जीतना चाहता है, विजय को चाहता है, हमेशा विजय का आकांक्षा करता है। तो यहां जो वैदर्भ है वो भी अपना पुत्री के लिए कुछ शर्त रखे। भगवत गीता में कहा गया है शौर्य तेज धृति क्षमा युद्ध च पलायनम, ये क्षत्रियों का स्वभाव है। दानम ईश्वर भावना क्षत्र कर्म स्वभावजम, शौर्य वीर्य धृति क्षमा दान और भगवान का भक्ति, ऐसा नहीं क्षत्रिय भी क्षत्रिय सिर्फ क्षत्रिय अपना का मतलब वृत्ति में रहे वो भक्ति नहीं करे, नहीं, क्षत्रिय के अंदर भी दयाभाव होना चाहिए। साधारण क्षत्रिय जो उनका जो ब्लड होता है उनका खून हमेशा उत्तेजित रहता है, हमेशा युद्ध 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 क्या करते हैं, खून देखने से उनका शक्ति बढ़ता है। और फिर भी उनके अंदर दया भाव होना चाहिए। जैसे अर्जुन, अर्जुन को जब भगवान ने बोले तुम युद्ध करो, तो अर्जुन जब बीच में देखा सब अपना संबंधी है, अपना भाई है, अपना गुरु है, अपना चाचा है, वो देख के वो युद्ध करने से पीछे हट गया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर दयाभाव था। ये दयाभाव का एक गुण, एक लक्षण बता रहा है। अर्जुन भगवान का बहुत बड़ा भक्त है, भगवान का सखा भी है, और भगवान का भाई भी जैसा ही है, मौसी का बेटा है। तो उनके अंदर ये दयाभाव दिखाई पड़ा उस समय। इससे हमें शिक्षा मिलता है कि हर क्षत्रिय के हृदय में, चाहे बाह्य रूप में वो कितना भी स्ट्रिक्ट ना हो, कितना भी, फिर भी उसके हृदय हमेशा कोमल रहना चाहिए। उनके हृदय में जीवों के प्रति दया होना चाहिए, तभी वो क्षत्रिय कर्म कर सकता है। तो ये जो मलद ध्वज है या वैधर्वी है, उसका स्त्री होने का एक कारण था कि वो अपना स्त्री से बहुत प्रेम करता था। प्रेम भी उनका भी अलग अलग श्रेणियां है। जैसे प्रेम की मुख्य तीन अवस्था है। एक तो प्रियतम की वियोग में रोना है, जब एक दूसरे से, एक पुरुष से एक स्त्री से प्रेम करता है, जो बीच में उनका कुछ मनमान्तर हो जाता है, तो क्या होता है, उनको विरह अनुभव होता है और उसमें वो रोदन करते हैं। रोने का भी एक और अच्छा लक्षण है, रोने से हमारे अंदर जो दुख है, तो वो रोने के रूप में वो बाहर निकल जाता है, फिर हमको बहुत हल्का लगता है, माइंड फ्री हो जाता है। रोना भी अच्छा है, रोना भी दो प्रकार होता है, एक खुशी में व्यक्ति रोते हैं और एक दुख में रोते हैं। जब खुशी में रोता है तो वो जो आंसू जो है वो गर्म 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 लगेगा, तो दुख का आंसू है, समझा जाए। और जो सुख में जो सा आनंद से रोता है, तो वो जो अश्रु है बहुत ठंडा है, शरीर को बहुत ठंडक देता है। तो एक तो है सिर्फ विरह में रोना, दूसरा प्रियतम के प्रेम में इतने तल्लीन हो जाना कि उनकी वियोग में उसे मिलने के लिए तड़पना। जैसे पति विदेश में है, पत्नी पति से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत दूर है, लेकिन हमेशा मन में इच्छा होता है मैं कब आएंगे, कब मिलूं। और तीसरे पत्नी पति के विरह में या प्रियतम के विरह में चिंतन करते करते इतना तल्लीन हो जाते हैं कि उनको शुद्ध बुद्धि पता नहीं चलता है, चाहे जड़ चेतन कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। ये तीन प्रकार होता है, और इसमें स्पिरिचुअल भी होता है और मेटेरियल भी होता है, भौतिक आध्यात्मिक। आध्यात्मिक स्तर पे हम गोपियों को ले सकते हैं, गोपियों भी भगवान का विरह में तड़पते थे, रोते भी थे, कभी कभी वो हमेशा विचलित रहते थे और चिंतन करते करते इतने तल्लीन हो जाते थे कि वो क्या जड़ क्या चेतन कुछ भी उनको शुद्ध बुद्धि नहीं रहता था, कुछ भी उनको पता नहीं चलता था। तो ये जो है ये सबसे उच्च कोटि की प्रेम है, भगवान से प्रेम करते हैं। कृष्ण हम पश्यताम गति, वो इतना भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, करते करते इतना तल्लीन हो जाते हैं कि वो सोचते हैं खुद हम ही कृष्ण है। ये जो टॉपिक है ये बहुत हाई लेवल का है, हम लोग को मतलब उसको व्याख्या नहीं कर सकते हैं। फिर भी ये जो गोपियों का जो प्रेम है भगवान प्रति, वो शुद्ध प्रेम था। और ऐसे ही तो भगवान का विरह में चिंतन करते करते बहुत गोपियां भी ऐसे शरीर छोड़कर भगवत धाम को प्राप्त कर लिए। लेकिन भौतिक क्षेत्र में अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें बंधन आता है, हमारा मुक्ति नहीं मिलता है, हम फिर बंधन में जकड़ जाते हैं। ये जो पुरंजन है जो वैधर्वी के रूप में जन्म हुआ है और मल्लध्वज से विवाह किया, इनका भी स्थिति ऐसा था भौतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक नहीं था, भगवान से उनका नाता नहीं था। फिर भी भगवान का कृपा से उनको भगवान भक्तों का एसोसिएशन दिया, एक भक्तों के साथ उनका विवाह हुआ और वो अपना पति को भगवान की सदृश ही मानते थे और उनका सेवा भी वैसे ही करते थे। तो अपना अपना पति का सेवा करते करते ही उनका भी कल्याण हो गया, वो भी परम गति को प्राप्त किए। क्योंकि यहां एक प्रपद एक परपट में लिखे थे, मैं थोड़ा लिखा हूं। प्रपद कहते हैं यदि कोई स्त्री भाग्यशाली हो कि वह किसी शुद्ध भक्त की पत्नी हो तो वह इंद्रिय तृप्ति की किसी इच्छा के बिना अपने पति की सेवा कर सकती है। यदि वह अपने उच्चस्थ पति की सेवा में लगी रहती है तो उसे स्वतः ही अपने पति की आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। कितना अच्छी बात है, पति को भक्ति अगर नहीं भी करते हैं, पत्नी अगर भक्ति भी नहीं करती है, उनका पति बहुत बड़ा भक्त है, भगवान का महान भक्त है, जैसे प्रहलाद, जनक, भीष्म तो ब्रह्मचारी है, प्रहलाद, जनक, ध्रुव महाराज, जजाति, चित्रकेतु, कितना बड़े बड़े भक्त पड़े हुए हैं, गृहस्थ भक्त। हमारे आचार्य की बात सुनिए ना, भक्ति विनोद ठाकुर, हमारा प्रभुपाद। अगर पति महान भक्त है भगवान का, विशुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो वो पति की सेवा अगर किया जाए तो पत्नी, वो पति का फायदा, पति का जो फल होता है, भक्ति का फल जो मिलता है वो पत्नी को भी ट्रांसफर हो जाता है, उनको करने की जरूरत नहीं है, अपने आप अकाउंट में आ जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद यही बात समझाते हैं, अगर पत्नी पति का सेवा बड़ी प्रेम से करते हैं तो वो भी पति की तरह वो भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, कर सकती है। और भी लिखे हैं प्रपद, एक एग्जाम्पल देते हैं। जब कोई लकड़ी जलता है तो पहले धुआं तथा विक्षोभ होता है, किंतु आग लगने पर लकड़ी ठीक से जलने लगता है। इसी प्रकार पति तथा पत्नी तप का नियम को पालन करते हैं तो वह शांत रहते हैं और काम उत्तेजन नहीं होते हैं। इसी तरह पति पत्नी दोनों को आध्यात्मिक सुख मिलता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए विलासी जीवन का पूर्ण त्याग करना होता है। यह विलासी जीवन जो पूर्ण त्याग करना होता है वो साधारणतः प्रभुपाद यहां स्त्रियों के लिए कहते हैं, माताओं के लिए कहते हैं कि उनको विलास जीवन त्यागना चाहिए। और प्रभुपाद यहां भी कहते हैं यद्यपि पत्नी स्त्री पुरुष से हर कार्य में थोड़ा 19-20 है, फिर भी तो विलास जीवन को त्यागना चाहिए। केवल पुरुष स्त्री के लिए नहीं है, पुरुष के लिए भी है, उनको भी ज्यादा विलास ज्यादा मतलब अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा मतलब ड्रेसिंग होना, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। भक्ति मार्ग में ये सब बाधक है। साधारणतः यहां तीन चीज बता रहे हैं प्रभुपाद ने, बताए अपनी आवश्यकता कम से कम करना, विलासी वस्त्र की इच्छा नहीं करना, और भोजन तथा नींद भी घटा देना चाहिए। मैत्री का तो प्रश्न ही नहीं उठता, ये जो वानप्रस्थी स्तर है। मतलब जैसे यहां मलयध्वज जब उस विषय से विरक्त हो गया और वो सब कुछ त्याग कर, मतलब सब कुछ अटैचमेंट छोड़कर वो अपना भगवान भक्ति में लगने लगा, वन में चले गए, उस समय ये उनका पत्नी वैदर्भी भी उनके साथ जाने लगे, और वो सब भी अब धीरे धीरे अपना विलास जो जीवन है उनको घटा दिए। और केवल पुरुष ही एक परमहंस हो जाएगा ऐसा नहीं है, स्त्री भी हो सकता है। कैसे? अगर वो इस विलास जीवन को अगर वो कम कर दे तो, त्याग दे तो, जैसे स्त्री का मुख्य आदत जो है दो चीज है, एक वस्त्र पहनना, अच्छा वस्त्र पहनना, और दूसरा बाल संवारना, प्रभुपाद कहते हैं। तो बाल संवारना और वस्त्र पहनना ये दो उनका बहुत प्रिय होता है। इसी के कारण क्या होता है, उसमें हमेशा मन लग दिमाग लगता है, मन लगता है, तो फिर हमारा जप भी छूट जाता है, ठीक से नहीं होता है। ये पुरुष के भी है, वो भी अपना बाल संवारते हैं, अच्छा ड्रेस पहनते हैं, ये दोनों में है। ऐसा स्त्री यहाँ स्त्री के बारे में बताया गया, दोनों के बारे में ये लागू हो सकता है। तो ये दोनों इस चीज को कम करना चाहिए। तब ये सब जब विलास व्यसन ज्यादा, अच्छा खाना, अच्छा भोजन, हाँ ये सब के भी हम कम कर देना चाहिए। भोजन और नींद, ये नींद जो है ना बहुत हराम ही होता है, हमेशा बोलता है हम आराम करने के लिए सोचता है, पर क्या होता है हमारे भक्ति जीवन में वो बाधक है, हम आलसी बन जाते हैं। आलसी व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता। भक्त जो है, डिवोटी जो है, हमेशा उसको तत्पर रहना चाहिए। कोई भी सेवा, कोई सेवा हो या मॉर्निंग प्रोग्राम हो, कोई भी हो, हर कार्य में वो तत्पर होना चाहिए, तभी वो कुछ भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकता है। नहीं तो अगर आलसी रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए प्रभुपाद हमेशा इसके ऊपर जोर देते हैं, हमेशा रेगुलेटिव में रहना चाहिए। जब तक हम रेगुलेटिव नहीं रहेंगे तब तक हम अच्छा से भक्ति भी नहीं कर पाएंगे और भक्ति का जो आनंद है हम प्राप्त नहीं कर सकते, कर पाएंगे। तो इसमें से क्या होता है, ऐसे करने से हम लोग क्या भक्ति मार्ग में हम आगे जा सकते हैं, एक उच्च कोटि के भक्त के रूप में हम समझा सकते हैं, समझा जा सकते हैं। और इससे क्या होता है, जब हम ऐसे रेगुलेटिव प्रिंसिपल पालन करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा जो भौतिक चीजों के प्रति जो आसक्त है और ये जो देहात्म बुद्धि है, देहात्म स्तर से हम ऊपर उठ जाते हैं, ऊपर उठ जाएंगे। ये सबसे बड़ा फायदा है। ऐसे बहुत सारे नियम है, इसीलिए भक्त को हमेशा रेगुलेटिव में रहना चाहिए, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी हो, सबके लिए रेगुलेटिव सबके लिए सेम है, साधना सबके लिए कंपलसरी है। ऐसा नहीं है 2-5 साल 10 साल बाद भक्ति किए, हम लोग सोचे हम लोग तो हो गए, हम बहुत परमहंस से बन गए, हम और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी करेंगे अपना मनमानी। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलने, ऐसा करने से क्या होगा, हमारा ही फायदा होगा, मतलब हमारा ही घाटा होगा, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। भक्ति में तो रहेंगे पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, गाड़ी वहीं अटका रहेगा, क्योंकि हम लोग अपराध भी करेंगे और भक्ति भी जब भी करेंगे तो उसमें क्या होगा, ना बात नीचे जाएंगे ना आगे बढ़ पाएंगे, यही भौतिक जगत में भटकते रहेंगे, संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म, भी अपना अपना कर्म से भटकते रहेंगे। तो इसीलिए हम लोग को हमेशा भक्ति मार्ग में तत्पर रहना चाहिए, कोई भी सेवा हो, चाहे साधना हो, जप हो, हर कार्य में हमको अच्छा से करना चाहिए। और इस श्लोक में यही टॉपिक है कि पुरंजन जो है स्त्री शरीर को प्राप्त किया, अपना कर्म के हिसाब से स्त्री के साथ चिंतन करते हुए स्त्री शरीर प्राप्त किया, और वो बाद में उनका भगवान की कृपा से वो भी बहुत बड़ा भक्त बनी, और उनका विवाह भी एक अच्छा भक्त से हुआ, और भी कुछ शर्त था। वो शर्त जो है, जैसे अर्जुन ने द्रौपदी की प्राप्त किए थे पांडवों ने मछली को तीर मारकर, और दूसरा भगवान श्री कृष्ण स्वयं 8 सांड को जीतकर वो एक रानी को, अपने रानियों से एक को प्राप्त किए। ऐसा नहीं, भगवान अगर वैसा नहीं करे तो भगवान उनके लिए ये सब नियम लागू नहीं है, फिर भी शास्त्र में जो कहा गया है उसको स्वयं भगवान भी पालन करने, भगवान के उसको ये नहीं कर सकते, आभर नहीं कर सकते, चाहे स्वयं भगवान क्यों ना हो। तो जब भगवान स्वयं संसार प्रकट होते हैं, वो जो नियम है संसार का उस नियम को पालन करते हुए, उस विधि विधान को करते हुए वो हम लोग को शिक्षा देते हैं, तो हम लोग तो क्या बात है, हम लोग तो करना ही चाहिए, कंपलसरी है। तो ये इनका विषय वस्तु यही है कि वो विदर्भी जो है, वैदर्भी की पुत्री, वो मल्लध्वज राम के बहुत बड़ा राजा से विवाह किया, और वो बहुत बड़ा भक्त भी है, वैष्णव भी है, तो ये उनका सौभाग्य है कि वो उनको भक्त से वो उनका विवाह हुआ। तो जब वो दोनों भक्त रहते हैं पति पत्नियों में, तो उनके बीच में जो गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है वो नहीं रहता है, एक दूसरे को वो समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग रहता है। तो इसीलिए हम अच्छा से इससे श्लोक के माध्यम से जो हमें ज्ञान मिलता है, हम उनको आचरण में लेने के लिए कोशिश करेंगे और हमेशा साधना में तत्पर रहेंगे। तो अभी तो समय हो गया, अभी हम यहीं विराम देते हैं। जय श्री प्रभुपाद की। अगर किसी का कमेंट है या प्रश्न है तो आप बता सकते हैं 2 मिनट के लिए। जय श्री प्रभुपाद की। ताय गौर प्रेमानंदे।